दौला लेक्चर नंबर 12। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं सिद्धमनंतमणिन्द्रिय मणुवमम पत्थसोखमणवज्रम् केवलपहोहणिज्य दुन्नयतिमिरं जिनं नमः। यह वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है भगवान पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। अभी हम ये जो द्वितीय बार हम पढ़ रहे हैं, इसमें पृष्ठ संख्या 94 पर आ गए, 94। हाँ, आपकी क्या शंका है? 87, 87 पृष्ठ पर। हाँ, रुजु सूत्र नय का विषय वर्तमान पर्याय है। देखो, व्यंजन पर्याय मनुष्य पर्याय को भी कहते हैं, परंतु वो स्थूल रुजु सूत्र नहीं है। स्थूल क्यों? वो एक समय नहीं, लंबे काल तक चलती है। तो एक समय वाली अगर पर्याय लेते हैं, जैसे प्रदेशत्व गुण की भी हम कहते हैं, वो आकार एक समय का भी है, हर समय का नया नया है। हाँ, तो वैसा का वैसा का वैसा चल रहा है, तो एक समय का भी उसको ले ले। वही पूछ रहे वो, उसको भी व्यंजन पर्याय कहते हैं। मनुष्य पर्याय को भी व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे हम कहते हैं हमारे 24 तीर्थंकर है वर्तमान के, तो ये हमारा वर्तमान बहुत स्थूल रूप से कह दिया। वैसे एक्चुअली एक समय वाली जो है उसी को रुजु सूत्र नए विषय करता है, स्थूल रूप से इसको भी रुजु सूत्र का विषय कहेंगे हम। और क्या कहाँ पर? पेज नंबर 94 पेज। हाँ, यह अवधि ज्ञान की बात। हाँ, देखो क्षेत्र की अपेक्षा क्या समझ, द्रव्य ने कितने सूक्ष्म स्कंध तक को जानता है। द्रव्य ने यहाँ परमाणुओं की संख्या लेना, अनंत परमाणुओं के स्कंध से वो तो चालू हो जाता है। तो कहते कहाँ तक, तो मिनिमम छोटे में छोटा अवधि ज्ञान भी कितने छोटे स्कंध तक जान सकता है। तो उसमें मैंने वो औदारिक शरीर के संचय वगैरह की बात की। क्षेत्र में क्या देखना है कि अपने कितने दूर तक के क्षेत्र तक के परमाणुओं को यानी स्कंधों को जानेगा। क्षेत्र को नहीं जान रहा है, उतने क्षेत्र में स्थित पुद्गल स्कंधों को जान रहा है। जैसे किसी का अवधि ज्ञान ऐसा है कि एक मील एरिया तक जो कोई है उसको वो जानेगा अवधि ज्ञान से, यानी यहाँ क्या होने वाला है या क्या हो गया है अभी, इस तरह से जो कुछ है। हाँ, वो परिणमन में भी अभी उसमें भी कुछ लिमिटेशन है, भाव में आएगा वो। हाँ, उतने क्षेत्र में जो परमाणु है या उतने क्षेत्र में जो आदमी है समझो, उस संबंध, क्योंकि आदमी ने वहां पर भी पुद्गल स्कंध है, उसका कर्म है, जो कुछ है वो, उसके अपेक्षा से भी उसके बारे में भी वो जान सकता है। कौन सा माप? वो तो मिनिमम कितने क्षेत्र तक, तो ये अंगुल है वो कितना छोटा है, निगोद का जो है अंगुल का असंख्यात भाग जो है ना, यहाँ क्या लिखा है देखो, क्षेत्र की अपेक्षा पेज नंबर 94 नीचे से पांचवी लाइन, क्षेत्र की अपेक्षा अवधि ज्ञान यानी जघन्य से जघन्य कितने क्षेत्र तक को जानता है, तो कहते अंगुल के असंख्यात विभाग क्षेत्र तक, यानी वो नहीं के बराबर है ना, अपने आत्म प्रदेशों के बाहर कितने तक जानता है, तो अंगुल के असंख्यात विभाग तक, वो तो कितना थिन एरिया हो गया, अभी स्किन भी उससे ज्यादा जाड़ी हो गई, असंख्यात भाग है ना अंगुल का, असंख्या अंगुल यानी समझ लो ना इतना है, उसका असंख्यात भाग कितना, वो तो पकड़ में भी नहीं आएगा, फिर भी वो वहां के उसको जानेगा। तो ये हमने कल देखा था क्षेत्र की बात। अब देखो ये अवधि ज्ञान की चर्चा चल रही है, तो अवधि ज्ञान किसको कहना, तो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थ कौन सा, एक पुद्गल ही है, उसको जानने वाला है और वो प्रत्यक्ष जानने वाला है, उसको अवधि ज्ञान कहेंगे। इंद्रियों के द्वारा वो बात नहीं है, या स्मरण करके जाना उसकी बात नहीं, उसको अवधि ज्ञान नहीं कह रहे, वो स्मरण से जो जाना जाता है ना, पूर्व भव की भी याद आती है तो वो तो जाती स्मरण, वो मति ज्ञान का भेद है, और ये अवधि ज्ञान की बात है, वो आगे का और पीछे का भी जान सकते हैं। अब इसको क्या सिक्स सेंस वगैरह जो कुछ नाम देते हैं ना लोग कि उसका ऐसा दिखता है, और उसी को अन्य मति ज्ञान, वो तो विभंग ज्ञान होता है किसी किसी को, तो कहते हैं हाँ ये आध्यात्मिक पुरुष है, ये त्रिकाल ज्ञानी है, ऐसा है वैसा है, यानी वो कुछ बातें समझ में आती है उसको आगा होने वाली, और वो बता सकता है किसी के, और वो हो गई वैसी तो फिर उसको चमत्कार मान लेंगे। ये तो अवधि ज्ञान है, वो विभंग ज्ञान है। देखा अभी हम फिर पढ़ते हैं इसको, ये पूरा पैराग्राफ शुरू से पढ़ेंगे, 94 पृष्ठ पर नीचे का पैराग्राफ। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के विकल्प से अनेक प्रकार के पुद्गल द्रव्य को, यानी द्रव्य के विकल्प है कितने द्रव्य तक को जानता है, उसकी अपेक्षा अवधि ज्ञान के भेद करेंगे। सबसे जघन्य में जघन्य अवधि ज्ञान इतने स्कंदों तक को जानता है, उससे पावरफुल है उससे और छोटे स्कंद को जानेगा, उसके पावरफुल है उसे और छोटे स्कंद को जानेगा, तो ये कितने द्रव्य को जानता है उसकी अपेक्षा अवधि ज्ञान के भेद करेंगे। तो अंतिम जो पावरफुल मोस्ट पावरफुल अवधि ज्ञान है सर्वावधि, वो एक परमाणु तक को जानेगा, ये हो जाएंगे द्रव्य की अपेक्षा भेद। क्षेत्र की अपेक्षा भेद अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र तक के वहां के पुद्गल को जानता है, अब कहते और एक फुट भर इतने क्षेत्र तक को जानेगा, और इतना क्षेत्र को जानेगा, पूरे लोक के क्षेत्र को जानेगा, यदि ऐसे असंख्यात लोक होते तो भी वहां तक के क्षेत्र को जानेगा, ये उसके अवधि ज्ञान के भेद क्षेत्र की अपेक्षा होगी। अब काल की अपेक्षा भेद बताएंगे, काल यानी अभी वर्तमान से
कितने?
जो बीत गया है अतीत काल, कितने काल पूर्व तक को जानेगा और कितने काल आने वाले वहां तक को जानेगा, तक शब्द लगाना, यानी जैसे हम कहें ना 1000 पूर्व तक और 1000 आने वाले जो भविष्य काल, ये जो उसकी रेंज होगी उसको उसका काल कहेंगे, तो इसकी अपेक्षा भी अवधि ज्ञान के भेद बताएंगे। तो ये अभी काल की बात हमने पढ़ने जा रहे हैं, पूरा पैराग्राफ पहले पढ़ लेते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के विकल्प से अनेक प्रकार के पुद्गल द्रव्य को जो प्रत्यक्ष जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान द्रव्य की अपेक्षा जघन्य रूप से जानता हुआ, यानी उसे जघन्य अवधि ज्ञान कितने क्षेत्र तक मिनिमम जानता है, उसके मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बातें बताएंगे। अवधि ज्ञान वो जघन्य वाला है, कम से कम कितने क्षेत्र तक जानेगा, अधिक से अधिक कितने, इस तरह से बताएंगे। तो यहाँ द्रव्य की अपेक्षा वो जघन्य वाला है उसकी बात कर रहे हैं। एक जीव के अवधारिक शरीर के संचय को लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण खंड करने पर, यानी असंख्यात खंड करने पर, इसकी बात हमने कल देखी थी जीव कांड में से पढ़ी थी ना, उनमें से एक खंड तक को जानता है, यानी इतने सूक्ष्म तक शब्द लगाए ना, वो इम्पोर्टेंट है, उसको जानता है कहेंगे, तो उससे छोटे को नहीं जानता, उससे बड़े वाले को जानेगा, नहीं समझे? देखो देखो, जो यहाँ कोई चीजें गिरी है उसमें से कितने छोटे छोटे को जान सकता है, तो कहते इतने छोटे को जाने, इसके छोटा होगा तो हमको नहीं दिखाई देगा, उसका अर्थ क्या है, इससे बड़े वाले को जानेगा कि नहीं जानेगा? आपने कल वो तो लाइन पढ़ी थी ना चश्मे के डॉक्टर के पास, अपने तीसरी लाइन तक पढ़ा, उसका अर्थ पहले दूसरे आप अच्छे से पढ़ ले, ये समझना है। एक खंड तक को जानता है उत्कृष्ट रूप से, यानी उत्कृष्ट अवधि ज्ञान, एक परमाणु तक को जानता है, यानी जो एक परमाणु को जानेगा तो बड़े बड़े सभी स्कंदों को जानेगा ही जानेगा। और वो जो मध्यम अवधि ज्ञान है वो तो जगन्य से उत्कृष्ट जो रेंज है एक परमाणु से लेकर वहां तक के परमाणु को पुद्गलों को जानेगा। अब क्षेत्र की अपेक्षा अवधि ज्ञान जघन्य से अंगुल यानी उच्छेदांगुल के असंख्यात विभाग, अंगुल का असंख्यात विभाग कौन सा अंगुल, तो उच्छेदांगुल, वो हमने देखा था ना कैसा लेना है, वो आठ यव वाला जो है उच्छेदांगुल कहते हैं, वो जो अंगुल है उसका असंख्यात भाग इतना ले लेना उसका, और उतने क्षेत्र तक को जानेगा। ये जघन्य में जघन्य और उत्कृष्ट में उत्कृष्ट असंख्यात तक को जानेगा। तो उत्कृष्ट से असंख्यात लोक प्रमाण क्षेत्र को जानता है, और जो मध्यम है जिसको अजघन्य, जो जघन्य नहीं है वो अजघन्य यानी वो मध्यम, जो उत्कृष्ट नहीं है वो अनुत्कृष्ट यानी मध्यम, तो वो कितने क्षेत्र को जानेगा, तो ये अंगुल के असंख्यात विभाग से लेकर असंख्यात लोक तक, वो अलग अलग भेद होंगे उसके। अभी ये अजघन्य कहने से उत्कृष्ट उसमें इंक्लूड होता है, परंतु यहाँ उनको मध्यम कहना है। चार अगर भेद करते हैं ना, उत्कृष्ट जघन्य अजघन्य और अनुत्कृष्ट, तब उसका अर्थ होता है उत्कृष्ट को अलग गिना हमने। जब केवल जहाँ मात्र उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट दो ही भेद करेंगे तो उसमें वो सारे जघन्य तक के सब आ गए। जब जघन्य और अजघन्य दो ही भेद करेंगे तो जघन्य अकेला एक अलग और उत्कृष्ट तक के सारे अजघन्य कहेंगे। जब हम चार भेद एट ए टाइम बता रहे हैं, जघन्य अजघन्य उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, तो उसका अर्थ है वो मध्यम वाले हैं, क्योंकि हमने उत्कृष्ट वाला भेद अलग बता दिया है, इसलिए तब उसको मध्यम में ले लेना। अभी काल की अपेक्षा बात चलेगी नीचे से दूसरी लाइन, अवधि ज्ञान काल की अपेक्षा जघन्य से आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण भूत और भविष्यत पर्यायों को जानता है, यानी कितने पहले तक की, तो आवली का असंख्यात भाग अभी आवली में अपने पकड़ में नहीं आवे तो उसका असंख्यात भाग कितना छोटा काल होगा, तो फिर भी उतना आगे पीछे का जान सकता है, यानी ऐसा कभी होगा ना, अभी होने वाला ये तो हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना। और उत्कृष्ट से असंख्यात लोक प्रमाण समयों में स्थित अतीत और अनागत पर्यायों को जानता है। देखो यहाँ काल किस में गिना है, असंख्यात लोक में, कैसे काल गिनेंगे असंख्यात लोक, उसका अर्थ क्या है, एक लोक में समय कैसे, यहाँ लोक की बात चल रही है, अब जरा कंफ्यूजन हो रहा है, आप बताएंगे, असंख्यात लोग काल के लिए यूनिट बता रहे हैं तो उसका अर्थ क्या, उसके प्रदेशों को समयों में कन्वर्ट करो, जैसे एक लोक में कितने प्रदेश है उसको अगर हम समय बनाएंगे, अभी लोक की बात छोड़ो, अंगुल है ना, अंगुल के असंख्यातवे भाग में जितने प्रदेश है ना उसको हम एक एक प्रदेश के लिए एक एक समय कहेंगे तो वो कितना बड़ा काल होता है, क्योंकि तो उसमें असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी उत्सर्पिणी चली जाती है, नहीं समझे, आवली का समय यहाँ सवाल ही नहीं, आवली तो डायरेक्ट आवली बात कह रहे अंगुल ने, आवली तो समयों का ही माप है और यहाँ प्रदेशों के माप से काल गिन रहे हैं, आवली तो डायरेक्ट इतने समय है वो आवली होती है, आवली में हम क्षेत्र नहीं गिनते, अंगुल में क्षेत्र गिनते हैं, अंगुल में हम जैसे ये हमने इतने इसमें जितने प्रदेश हो गए अभी इसकी इतने भी नहीं, इसका संख्या तो भाग करो जो दिखेगा भी नहीं, तो उसमें प्रदेश कितने हैं, उतने क्षेत्र में आकाश के कितने प्रदेश है, तो असंख्यात है। कितने असंख्यात है, तो एक अवसर्पिणी उत्सर्पिणी के लिए 20 कोड़ा कोड़ी सागर लगते हैं, ऐसे एक दो चार नहीं, असंख्याता संख्यात। इतने उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में जितने समय हो गए उतने प्रदेश अंगुल के असंख्यात भाग में पाए जाते हैं। तो अंगुल में कितने हो गए, तो लोक में कितने हो गए, तो असंख्यात लोक में कितने समय हो गए, ये हम इमेजिन कर सकते हैं। इतने पूर्व का और बाद में आने वाला काल तक को जानते हैं अवधि ज्ञानी, वो सर्वावधि वाले। यानी क्षेत्र के लिए भी असंख्यात लोक कहा है और काल के लिए भी असंख्यात लोक कहा है, वो बहुत बड़ा काल है। ये समझ में आई बात, अभी आगे बढ़ेंगे। हाँ,
यहाँ पर बता रहे हैं कि काल द्रव्य क्षेत्र काल भाव की
मर्यादा हाँ।
तो यहाँ काल की मर्यादा में भी असंख्यात तक काल तक ही, मतलब असंख्यात समयों का जो कोई काल होगा, अनंत काल तक नहीं जानेंगे,
नहीं जाए नहीं गए
हाँ।
और ये काल की अपेक्षा उसमें भेद भी होते हैं ना, इतने काल तक जानने वाला, जैसे कोई हजार साल
नहीं, मैक्सिमम जो है असंख्यात लोग असंख्यात,
उससे ज्यादा काल को नहीं जाने।
वही तो मैं बता रहा हूँ,
वो
असंख्यात में भी संख्या मतलब मेरे मर्यादा आई,
बिल्कुल आई,
या नहीं तो केवल ज्ञानी अनंत काल तक जानेंगे ऐसा,
वो तो अनादि अनंत को जानते हैं।
एक क्वेश्चन था, यहाँ पे सर्वावधि है वो क्या बारहवें गुण स्थान के अंत में उसको सर्वा उत्कृष्ट ज्ञान हो सकता है कि उसके पहले भी?
नहीं नहीं, पहले छठे से लेकर कहीं पर भी होगा सर्वावधि ज्ञान, छठे से लेकर बारहवें तक पाया जाता है। क्यों ऐसा क्यों प्रश्न है?
नहीं, क्योंकि अनुभाग का भी घात होता जाता है, तो क्या श्रेणी में
केवल अनुभाग का घात हुआ इसलिए नहीं, वो तो उस ज्ञान की विशेषता प्रकट हुई है। जैसे मनपर्य ज्ञान कहाँ से कहाँ तक है,
छह
से बारहवें तक, वैसे अवधि ज्ञान है सर्वावधि भी छठे से बारहवें तक है। वापर भी सकता है नहीं भी, क्योंकि अवधि ज्ञान है इसलिए उसका अवधि ज्ञान से जानना ही चाहिए, ऐसी भी बात नहीं, और नहीं भी जानेंगे ऐसा भी नहीं है। महत्व की कोई बात ही नहीं ना उसमें, छठे गुणस्थान में ही वो जानेंगे, तो छठे गुणस्थान में ही जानेंगे, जानेंगे तो ये कर्मों की भी एक एक परमाणु तक की बात वो जानते हैं। हाँ देखो, ये हमने देखो फिर से पढ़ती हूँ। अवधि ज्ञान काल की अपेक्षा जघन्य से आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण भूत और भविष्यत पर्याय को जाने, यानी वर्तमान पर्याय के पीछे आवली का असंख्यात भाव, आने वाला आवली का असंख्यात भाव, और उत्कृष्ट से असंख्यात लोक प्रमाण समयों में स्थित अतीत और अनागत पर्यायों को जानता है। अजघन्य और अनुत्कृष्ट यानी मध्यम अवधि ज्ञान जघन्य और उत्कृष्ट के अंतरालगत काल भेदों को जानता है, यानी वो कम से कम काल से इतने काल तक के अलग अलग भेद हो गए। भाव की अपेक्षा अवधि ज्ञान पहले निरूपणा किए गए द्रव्य की शक्ति को जानता है, यानी पहले निरूपण है जो कि कौन से स्कंद को जानता है, कितने क्षेत्र वाले, तो उसके पर्यायों को जानेगा, ये उसका भाव होगा। कौन से स्कंद को जानता है, हमने देखा इतने छोटे स्कंद तक को जानेगा, तो फिर ये जो परमाणु का स्कंद है इसकी पहले क्या अवस्था थी, बाद में क्या होने वाली है, इसके बारे में वो अवधि ज्ञान जानेगा। भाव में लेना यहाँ लिखा ना, देखो भाव की अपेक्षा अवधि ज्ञान पहले निरूपण किए गए द्रव्य की यानी पुद्गल की या स्कंद की जो कुछ हमने देखा उसकी शक्ति को जानता है। शक्ति है उसकी कुछ अवस्थाएं होने वाली, उसका स्पर्श रस गंध वर्ण के बारे में कुछ जानेगा, उसके पर्यायों के बारे में। अभी मन पर अभी यहाँ तो बहुत शॉर्ट में दिया है, जीव कांड में हमने बहुत विस्तार से इसको पढ़ा है, क्योंकि अवधि ज्ञान के भी देशावधि परमावधि सर्वावधि भेद होते हैं, वो एक एक देशावधि के भी असंख्य वो भेद, द्रव्य की अपेक्षा भेद, क्षेत्र की अपेक्षा भेद, काल की, जितने द्रव्य का आगे आगे वाला भेद होता है तो क्षेत्र उतना उतना ही रहता है, उसकी वो बहुत विस्तार से बात हमने देखी थी। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, मन परिज्ञान की बात कर रहे हैं अभी, जो दूसरों के मनोगत, मनोगत है ना मन में स्थित मूर्तिक द्रव्यों को, मूर्तिक द्रव्य कितने हैं, एक पुद्गल ही है हा? तो यानी कोई पुद्गल द्रव्य के बारे में उसका जो कुछ विचार चल रहा है, दूसरों के मन में स्थित मूर्तिक द्रव्यों को उस मन के साथ प्रत्यक्ष जानता है, क्योंकि मन भी द्रव्य मन है ना, तो मन के साथ प्रत्यक्ष जानता है, उसे मनपरे ज्ञान कहते हैं। मनपरे ज्ञान, अभी यहाँ पर भी द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा होगी। हाँ, कौन सी,
जो दूसरों के मनोगत,
जो दूसरों के मनोगत मूर्तिक द्रव्यों को उस मन के साथ, उस यानी उसका अर्थ क्या लेना, मन के साथ प्रत्यक्ष जानता
है, मन की बात कर रहे उसकी,
उस मन यानी अपने मन के साथ,
नहीं 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 तेन मने न सर, उसके मन के साथ, मन पज्जो नानम नाम पर मनो गया मुक्ति दौवाणम तेन मनेन सह पच्चखम जान दी, यानी दूसरों के पर मनोगत और तेन मनेन सह, वो पर मन जो है उसके साथ वो प्रत्यक्ष जानता है,
दूसरों के मन में स्थित मूर्तिक द्रव्य को
वो मन, दूसरे के मन के साथ, वो दूसरे का मन भी उनके जानने में आता है, ऐसा कहना चाहता
है, यानी द्रव्य मन,
हाँ द्रव्य मन,
उस मन के साथ यानी जिसमें वो मूर्तिक द्रव्य स्थित है, उस मन के साथ।
ये ऐसी परिभाषा यहाँ खास है ना, वो मन के साथ जानता है, तो पहले हमने ये परिभाषा याद कभी नहीं की थी। मन परे ज्ञान द्रव्य की अपेक्षा जघन्य रूप से एक समय में होने वाले औदारिक शरीर के निर्जरा रूप द्रव्य को जानता है। एक समय में, एक समय प्रबद्ध ग्रहण होता है, एक समय प्रबद्ध उसका निर्जरा रूप होता है, तो कहते उसको जानता है, यानी उतने द्रव्य उत्कृष्ट रूप से है डाला है हमने बात पहले, जानता है। और उत्कृष्ट रूप से कारमाण द्रव्य के अर्थात आठ कर्मों के एक समय में बंधे हुए समय प्रबद्ध रूप द्रव्य के अनंत भागों में से एक भाग को जानता है। देखो क्या कहना चाहते हैं, जैसे हमने माने कहाँ तक को जानता है, जो एक परमाणु को जानने वाला वो पावरफुल हुआ, वैसे यहाँ जघन्य से कितना जानता है, तो औदारिक शरीर का निर्जरा रूप द्रव्य यानी एक समय प्रबद्ध ग्रहण होता है, एक समय प्रबद्ध खिलता है, करीबन उतना को जानता है, यानी स्थूल को जानता है। और जो सूक्ष्म को जानता है वो कहाँ तक जानेगा, तो आठ कर्मों के एक समय में बनता है उसको कारमाण का समय प्रबद्ध
कहेंगे,
उसका अनंत वाभा, कारवाण के समय प्रबद्ध का अनंत वाभा। क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य से गव्युति पृथक्त, अर्थात दो तीन कोश क्षेत्र को जानता है। और उत्कृष्ट रूप से मनुष्य क्षेत्र के भीतर जानता है, मनुष्य क्षेत्र के बाहर नहीं जानता, यानी 45 लाख योजन वाला जो मनुष्य क्षेत्र है वहां तक ही जानता है, उसके बाहर को नहीं जानता। यहाँ पर मनुष्य क्षेत्र से प्रयोजन विष्कम्भ रूप मनुष्य क्षेत्र से है, वृत्त रूप मनुष्य क्षेत्र से नहीं, ये स्पष्ट यहाँ बताया है। यानी गोलाकार मनुष्य क्षेत्र नहीं लेना, चौकोर लेना, 45 लाख योजन का चौकोर करना। और यह मानुषोत्तर पर्वत गोल है
तो
ये चौकोर के अंदर फिट होगा, परंतु उसी चार कोनों में अभी एरिया रह जाती है, वहाँ कोई 3 इंच देव है उनके मन की भी बात जानेंगे, ये लेते हैं।
कैसे हो सकता है किसका मन परी ज्ञान है और अवधि ज्ञान नहीं है?
हो सकता है। तीन ज्ञान में मतिशुत और अवधि लेना या मतिशुत मन परी लेना।
सो किसको मन परी ज्ञान है और अवधि ज्ञान नहीं है? वो मन परी ज्ञानी जीव पर के मन में जो अवधि ज्ञान का उगाड़ हो रहा है, जो बात चल रही है, उसको जानेगा।
मन में स्थित यानी वो अवधि ज्ञान से कुछ जान रहा है।
हाँ।
वो मन से नहीं जान रहा है, अवधि ज्ञान से।
वो तो प्रत्यक्ष जान रहा है तो, पर उसके मन में उसके बारे में कुछ विचार चल रहे हैं तो उसको
नहीं, वो जाने हुए को उसने मन में लिया तो वो बात अलग,
जान सकते हैं।
जाने हुए को उसने मन के द्वारा नहीं, मति ज्ञान के द्वारा जान रहा है, मन के द्वारा
जानेगा नहीं। वो तो प्रत्यक्ष ज्ञान है।
कौन सा?
अवधि ज्ञान।
अपन एक बार अवधि ज्ञान से जाने हुए फिर मन में उसका स्मरण तो होगा कि नहीं? उसके मन में वो होगा तो ही ये जानेंगे। नहीं समझे?
हाँ समझ गया।
वो क्या कह रहे, कोई अवधि ज्ञान से जान रहा है तो मन परिज्ञानी उसको जानेगा कि नहीं? उसके अवधि ज्ञान से जो जान रहा है वो, तो अवधि ज्ञान से जाने हुआ उसने मन में ले लिया, जैसे आपने सुबह कोई चीज सुनी थी तो अभी मन के द्वारा आप उसको रिमाइंड कर सकते हैं, स्मृति में ले सकते हैं, यानी मन में आप उसके बारे में सोच रहे हो तो हाँ। मन परिज्ञानी उसको जानेगा, जैसे अवधि ज्ञान से उसने कुछ जान लिया है।
हाँ, बराबर।
और अभी वो तो मन
उसके
में
बारे उसके, में सोचता है।
हाँ, उसके बारे में वो स्मृति में लिया, उसको स्मरण में आया, उसको अवधि ज्ञान से जाना हुआ को स्मरण में ले सकता है कि नहीं? ले सकता है तो उसको ये जानेगा। जान सकता है क्योंकि वो कितना पावरफुल है उसके अनुसार, उसकी जो रचना बहुत छोटी है ना, वो भी अंगुल का संख्या का भाग लेती है। हाँ देखो अभी क्या कहते हैं, यहाँ पर कहाँ गया? हाँ
चौथी लाइन,
क्षेत्र की अपेक्षा बताया, काल की अपेक्षा जघन्य रूप से 2-3 भवों को ग्रहण करता है और उत्कृष्ट रूप से असंख्यात भवों को ग्रहण करता है। अर्थात जानता है। भाव की अपेक्षा मन परे ज्ञान पहले निरूपण किए गए द्रव्य की शक्ति को जानता है। उसके कुछ पर्याय, उनकी जितनी शक्ति है क्या है किनारे की, उसको जानेगा। जो अतीत अनागत ये नीचे जो फुटनोट लिखा है नन सु, कौन सा सूत्र है वो? नन सु का अर्थ क्या है? पहले हमने ये देखी थी ना ग्रंथों की सूची, ननसु का अर्थ क्या है? ननसु नंदी सूत्र, इसमें तो गोमरसार जीव कांड के उन्होंने उद्धरण लिए। ये जो ना विषय पेज नंबर 80 प्रस्तावना की 80 नंबर के पृष्ठ पर संकेत सूची जो लिखा है ना, टिप्पणियों में उल्लिखित ग्रंथों की, यानी ये फुटनोट में वो ग्रंथों के नाम शॉर्ट में दिए, शॉर्ट फॉर्म दिए उसके, तो ये किसका शॉर्ट फॉर्म का क्या अर्थ होता है वो वहाँ लिखा है। जैसे भी ये 80 नंबर पुस्तक के शुरुआत में, ऐसे गोजी लिखा है, गोजी यानी गोमरसार जीव कांड। हाँ, गोमरसार जीव कांड का भी है, इन्हें मनपरि ज्ञान के भी दो भेद करेंगे, विपुलमति और रुजुमति, फिर उसके भी जो जघन्य और उत्कृष्ट के भेद बताएंगे। यहाँ तो बहुत बहुत ही शॉर्ट में बताया है, और ये पूरा ज्ञान मार्गणा का ही विषय कितना बड़ा है गोमरसार जीव कांड में। यहाँ तो उनका तो जीव स्थान जो है ना, तो वो कौन सा प्रमाण है क्या है उसकी चर्चा चल रही है उसके, इसलिए बहुत शॉर्ट में उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि नयों के बात यहाँ बात हो रही थी। देखो अपना विषय क्यों आया ये ज्ञानों का, देखो नयों के बात हमने देखो अनुगम की बात चल रही थी, 92 पेज से अनुगम चल रहा था। तो यहाँ कहा था कि प्रमाण से, कौन सा द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत रूप प्रमाण से, ये बात वहां आई थी। तो ये द्रव्य प्रमाण और भाव प्रमाण की बात निकाली थी उन्होंने, तो उसमें ये भाव प्रमाण के भेद चल रहे हैं। भाव प्रमाण के भेद में ये पांच ज्ञानों को ले लिया। तो अभी हमने ये केवल ज्ञान की भी बात यहां बताई। देखो 96 पेज पर केवल ज्ञान की बात है ना, सेक्टर लाइन में जो अतीत अनागत, अनागत यानी आने वाला भविष्यकाल, और वर्तमान पर्यायों सहित संपूर्ण द्रव्यों को, यानी सभी द्रव्यों के तीनों काल की पर्याय प्रत्यक्ष जानता है, वो भी एक समय में युगपत है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। अब ये तो पांच के नाम बताए, उसका बिल्कुल शॉर्ट में उन्होंने वर्णन किया। अब कहते यहां पर क्या विनिबोधिक प्रमाण से प्रयोजन है, क्या श्रुत प्रमाण से प्रयोजन है, क्या उधि प्रमाण से प्रयोजन है, क्या मनःपर्याय प्रमाण से प्रयोजन है, अथवा क्या केवल प्रमाण से प्रयोजन है, इस तरह सबके विषय में पृच्छा करनी चाहिए। यानी ये जो भाव प्रमाण की बात आई थी, वो भाव प्रमाण में उन्होंने ये पांच नाम बताए, क्योंकि इसमें से यहाँ कौन सा प्रयोजन है ये बात हमको बताओ, तो उसकी बात अभी बताएंगे। तो इस तरह पूछे जाने पर यहाँ पर न तो अभिनिबोधिक प्रमाण से प्रयोजन है, न अवधि प्रमाण से प्रयोजन है, और न मनःपर्याय प्रमाण से प्रयोजन है, किंतु ग्रंथ की अपेक्षा श्रुत प्रमाण से और अर्थ की अपेक्षा केवल प्रमाण से प्रयोजन है, ऐसा उत्तर देना चाहिए। क्योंकि ये श्रुत प्रमाण जो ग्रंथ है, तो श्रुत ज्ञानियों ने लिखा है, वो श्रुत प्रमाण है, परंतु ये अर्थ है ने उसका जो भाव बताया है वो तो केवल ज्ञानी ने बताया है, ये किसी श्रुत ज्ञानियों ने उसके अपने मन से रचना नहीं की है। केवल ज्ञानी ने जो बताया है पदार्थों का स्वरूप, वो श्रुत ज्ञानियों ने जानकर ग्रंथों की रचना की है। इसलिए कहते अर्थ की अपेक्षा केवल प्रमाण से प्रयोजन है, ऐसा उत्तर देना चाहिए। यहाँ पर पूर्वानुपूर्वी से गणना करने पर, पूर्वानुपूर्वी ने शुरू से अंत तक बताना, उसको कहेंगे पूर्वानुपूर्वी। द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत की अपेक्षा तो दूसरे श्रुत प्रमाण से प्रयोजन है, यानी यदि हमको इसमें पांच बताए ना, कौन से मति श्रुत अवधि मनःपर्याय और केवल, ये पांच भाव प्रमाण बताए उन्होंने, तो श्रुत का नंबर कौन सा है, दूसरा। शुरू से देखेंगे तो दूसरा, अंत से देखेंगे तो चौथा होगा। इसलिए पूर्वानुपूर्वी से दूसरे नंबर का है, ऐसा कह रहे हैं। जैसे 24 तीर्थंकर है और हमने अजितनाथ का नाम लिया तो कितने नंबर के हैं? दूसरे पर। शुरू से देखेंगे तो दूसरे और अंत से गिनेंगे तो 23वें हो गए, ये कहना चाहते। देखो यहाँ पर पूर्वानुपूर्वी से गणना करने पर द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध की अपेक्षा तो दूसरे शुद्ध प्रमाण से प्रयोजन है, ये दो नंबर के, दूसरे यानी दो नंबर का है। और अर्थ की अपेक्षा पांचवे केवल ज्ञान प्रमाण से प्रयोजन है, यानी केवल ज्ञान पांचवा नहीं, यो तो मति शुद्ध अवधि मनोपरे केवल में उसका पांचवा नंबर है। पश्चादानुपूर्वी से अभी उल्टी गणना करेंगे तो द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध की अपेक्षा चौथे शुद्ध प्रमाण से प्रयोजन है और अर्थ की अपेक्षा प्रथम केवल प्रमाण से प्रयोजन है। जैसे तीर्थंकरों का हम पश्चादानुपूर्वी से देखेंगे तो महावीर पहले नंबर पर आ जाएगा, है ना, और पूर्वानुपूर्वी से 24वें नंबर पर आएंगे, ये कहना चाहेंगे। आसान है ना, बच्चों का खेल है, इसमें कुछ नहीं कठिन, वो पूर्वानुपूर्वी क्या है समझ में आता है तो आसान है। अब यथा तथानुपूर्वी ने कैसे भी गिनो उसको, क्रम से मत गिनो, तो यथा तथानुपूर्वी से गणना करने पर शुद्ध प्रमाण और केवल प्रमाण इन दोनों से प्रयोजन है, यानी उसको नंबर कहने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने कहीं से भी बता दिया, तो डायरेक्ट हम शुद्ध और केवल ज्ञान की बात करेंगे। अभी शुद्ध ज्ञान यह सार्थक नाम है। देखो ये पूर्वानुपूर्वी अनुपूर्वी नाम आपको याद आए किस में लिया था? अवतार में। देखो पेज नंबर 73 था शायद, उपक्रम के भेद थे, अवतार में उपक्रम निक्षेप नए अनुगम लगे थे। अब उसमें अनुपूर्वी बता दी, ये उपक्रम के पांच भेद, यानी ये अनुपूर्वी उपक्रम हुआ। हाँ पेज नंबर वहां पर हमारे 73 से शुरुआत हुई थी। अब शुद्ध ज्ञान यह सार्थक नाम है, अनुपूर्वी के बाद नाम की है, नाम उपक्रम है। किसी भी विषय पर ये लगाना था ना, ये अवतार चार प्रकार के, उसमें उपक्रम लगा रहे अभी। अभी तीसरी बात क्या है?
प्रमाण
तो बता दिया उन्होंने, अभी वक्तव्यता बता रहे हैं, क्योंकि प्रमाण की तो बात चल रही है ना, शुद्ध प्रमाण की। अब तीन वक्तव्यताओं में से इस शुद्ध प्रमाण की तदुभय वक्तव्यता, तदुभय उभय ने स्व समय और पर समय वक्तव्यता जानना चाहिए, ये वक्तव्यता हो गई। ये वक्तव्यता उपक्रम हुआ, प्रमाण तो इटसेल्फ ही है ना, ये शुद्ध प्रमाण की बात चल रही, इसलिए वो प्रमाण की अलग से बात नहीं बताई। अब अर्थाधिकार, ये अर्थाधिकार उपक्रम है। अर्थाधिकार दो प्रकार का है, यानी जो शुद्ध प्रमाण है उसमें जो उसमें क्या क्या है, उसमें अर्थाधिकार क्या क्या बता रहे, तो अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग प्रविष्ट यानी जो हम 12 अंग कहते, जो अंग अंगों में जो रचना है वो अंग प्रविष्ट कहेंगे, और अंगों 12 अंगों की रचना के बाद कुछ अक्षर रह जाते हैं उसमें से 14 प्रकीर्णक बनाए, उसको अंग बाह्य शुद्ध कहते हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। तो ये दो भेद हो गए, उनमें से अंग बाह्य के 14 अर्थाधिकार है, जिसको हम 14 प्रकीर्णक भी कहते हैं, वे इस प्रकार है। सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प। ये हमने कल्प्य देखे थे जीवकांड में, कल्प्य कहा था वहाँ, यहाँ कल्प कहा है, ठीक है। पुंडरिक, महापुंडरिक और निषिद्धिका, उनमें से अभी हर एक का विषय क्या है वो बता रहे हैं। ये मुनियों के लिए खास विशेषता इसमें बातें हैं। सामायिक नाम का अंग बाह्य अर्थाधिकार, नाम स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन छह भेदों द्वारा समता भाव के विधान का वर्णन करता है। सामायिक यानी समता भाव, तो ये हमने नाम सामायिक रख दिया, स्थापना कर दी है सामायिक है, इस तरह से वो सारे निक्षेप वगैरह लगाएंगे। चतुर्विंशति स्तव अर्थाधिकार, उस काल संबंधी, ये चतुर्विंशति स्तव यानी अभी हमारे तो अभी जो अभी बीत गया उस काल में हमारे जो आदिनाथ से महावीर तक तीर्थंकर हुए उनकी बात होगी, आने वाले उत्तर पिंड में वो तीर्थंकरों की बात होगी। तो उस काल संबंधी बताए ना, 24 तीर्थंकरों की वंदना करने की विधि, उनके नाम, संस्थान यानी उनका आकार, वैसे तो उच्छेद यानी उनकी हाइट कितनी, 5 महाकल्याणक और 34 अतिशयों के स्वरूप और तीर्थंकरों की वंदना की सफलता का वर्णन करता है। अब तीसरा वंदना नाम का अर्थाधिकार,
यहाँ पे इसे बताए उस काल की, उस काल संबंधी, तो यहाँ पे खाली 24 तीर्थंकरों अलग हो गए, बाकी तो सभी सेम होगा ना,
बाकी
ये जो बताया उनके, अच्छा उनके नाम अलग हो गए।
देखो 24 तीर्थंकरों के स्तव करना है, उनका स्तवन करना है, उनकी जो कुछ बातें बतानी है, तो हर एक के नाम बताएंगे। हाँ। उनके हाइट वगैरह कौन हो बताएंगे।
अच्छा।
तो हम किसी तीर्थंकरों की जो पूजा है उसमें क्या बताया जाता है, उनके माता पिता का भी नाम होता है, कभी उनके कल्याणक कवि होते हैं वो भी बात बताते हैं, उनकी विशेषताएं बताई जाती है, यही तो है ना इसका। संस्थान तो तीर्थंकर है तो समय चतुर संस्थान है। वंदना, वंदना नाम का अर्थाधिकार, एक जिनेन्द्र देव संबंधी और उन एक जिनेन्द्र देव के अवलंबन से जिनालय संबंधी वंदना के निरवध्य भाव का अर्थात प्रशस्त रूप भाव का वर्णन करता है। सावध्य के उल्टा निरवध्य, शुभ भाव, प्रशस्त भाव। ये वंदना की, देखो चतुर्विंशति स्तव में 2400 तीर्थंकरों की होगी और उसमें से एक विशेष भगवान की वंदना, वो वंदना में आ जाता है। अब ये प्रतिक्रमण की बात चलेगी। प्रमाद कृत यानी प्रमाद के कारण जो कोई दोष लगता है उसका जिसके द्वारा निराकरण किया जाता है उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। तो प्रमाद कृत दैवसिक आदि दोषों का निराकरण जिसके द्वारा किया जाता है उसे प्रतिक्रमण कहते हैं। दैवसिक यानी जो दिन में दोष लगे हैं वो दिन के अंत में किया जाता है, वो दैवसिक प्रतिक्रमण हुआ। रात्रि में जो दोष लगे हैं रात्रि के अंत में प्रातःकाल में किया जाता है वो रात्रि संबंधी रात्रिक होगा। तो इसके नाम बताए हुए भेद, वह दैवसिक यानी दिन के अंत में किया जाएगा, रात्रिक रात्रि के अंत में यानी अर्ली मॉर्निंग में, पाक्षिक यानी पक्ष के बाद 15 दिन के बाद, चातुर्मासिक 4 महीने के अंत में किया जाता है, सांवत्सरिक पूरे साल का, कहते हैं संवत्सरी कहते हैं वो क्या है, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण होता है, अयापथिक यानी मुनिराज जो
चल के ले जाते हैं
तो उसमें जो कुछ दोष लगा है उसके बाद वहाँ उसका अयापथिक प्रतिक्रमण करते हैं, और उत्तम आर्थिक जिसको उत्तम यानी के आयु के अंत में जो प्रतिक्रमण होता है वो 7 प्रकार का है। ये प्रतिक्रमण नाम का अर्थाधिकार, दुष्मादि काल और 6 सहनन से युक्त स्थिर तथा अस्थिर स्वभाव वाले पुरुषों का आश्रय लेकर इन 7 प्रकार के प्रतिक्रमणों का वर्णन करता है। यानी ये जो श्रुत है ना, श्रुति की बात है, इस ग्रंथ में किसका वर्णन है, तो ये इन 7 प्रतिक्रमणों का वर्णन है। अब पांचवा वैनयिक।
यहाँ पे ऐसे बताया स्थिर, अरे छह सनन से युक्त स्थिर और अस्थिर स्वभाव वाले पुरुषों का आश्रय लेकर,
यानी अन्य अन्य जीवों की अपेक्षा से ये सात प्रतिक्रमणों का वर्णन है। कितने डिटेल होगा ना वो, तो कौन से जीवों के कैसे किस प्रकार से वो करना चाहिए, इसमें काल की अपेक्षा वगैरह वगैरह जो बातें होगी, सहनन की अपेक्षा बातें होगी। वैनयिक वैनीयक कहा, नाम का अर्थाधिकार वैनीयक, पहले हमने वैनयिक समझ, वैनयिक था वह वैनयिक और वैनीयक कहा, वैनयम वैनयिक चाहिए, वैनयिक
वैनयिक चाहिए,
वैनीयक नहीं है, वैनयिक अभी। वैनयिक नाम का अर्थाधिकार, यानी इस ग्रंथ में क्या है, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय, इस तरह इन पांच विनय प्रकार की विनयों का वर्णन करता है। छठा कृतिकर्म नाम का अधिकार अर्थाधिकार, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु की पूजा आदि की विधि का वर्णन करता है। विशिष्ट काल को विकाल कहते, विशिष्ट काल विकाल, उसमें जो विशेषता होती है उसे वैकालिक कहते हैं, वे वैकालिक दश है। विशिष्ट काल में जो कोई है ना, उसकी विशेषता वो वैकालिक कहते हैं। उन दश वैकालिकों का, दश वैकालिक नाम का अर्थाधिकार वर्णन करता है, तथा वह मुनियों की आचार विधि और गोचर विधि का भी वर्णन करता है। यानी मुनियों के आचार और उनके, तो जब वो आहार के लिए जाते हैं तो किस विधि से जाना है, वो सब उसमें वर्णन आता है। ये हो गया दश वैकालिक, यानी मुनियों के किस काल में क्या होने चाहिए, कौन से आचार आदि होते हैं उनके, नित्य नैमित्तिक वगैरह, नित्य कौन सी क्रियाएं होती है उनकी, जिसमें अनेक प्रकार के उत्तर पढ़ने को मिलते हैं, उसे उत्तराध्ययन अधिकार अर्थाधिकार कहते हैं। यह चार प्रकार के उपसर्गों को कैसे सहन करना चाहिए, 22 प्रकार के परिषहों के सहन करने की विधि क्या है, इत्यादि प्रश्नों के उत्तरों का वर्णन करता है। नौवा कल्प व्यवहार,
ये अंग बाह्य है तो आचारण में और इसमें कुछ
बिल्कुल फर्क होगा ही ना, आचारण में तो पूरे सब मुनियों के आचारों संबंधी, इसमें और विशेषता की बात है कुछ, वो तो आएगा ना उसका पूरा। अभी अंगों का कहाँ वर्णन देखा है हमने, वो पर आने वाला है, अभी अंग बाह्य की बात चल रही है। 12 अंगों में क्या क्या बात है वो सब बताएंगे डिटेल में। एक कल्प व्यवहार साधुओं के योग्य आचरण का और अयोग्य आचरण के होने पर प्रायश्चित विधि का वर्णन करता है। कल्प नाम योग्य का है और व्यवहार नाम आचार का है। आचरण हमने पहले उसको करेक्ट किया था, आचरण क्या, आचरण करना, वो आपके पुस्तक में करेक्शन नहीं होगा तो कर लेना। आचरण पहले हमने सुधारा था उसको, पांचवी लाइन में अयोग्य आचरण लिखा है, वो आचरण चाहिए, मिला वो आचरण चाहिए, वो बराबर है, वो आचार बराबर है, आचार शब्द से आचरण शब्द तैयार हुआ है, बराबर आचार्य ने आचरण, यानी कल्प ने योग्य, कल्प व्यवहार है ना उसका नाम, और व्यवहार ने आचरण आचार। अब कल्पाकल्प द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा मुनियों के लिए यह योग्य है और यह अयोग्य है, इस तरह इन सब का वर्णन करता है, कल्प अकल्प है ना, कल्पाकल्प महाकल्प। काल और सहनन का आश्रय कर साधुओं के योग्य द्रव्य और क्षेत्रादि का वर्णन करता है। इसमें उत्कृष्ट सहन आदि विशिष्ट द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का आश्रय लेकर प्रवृत्ति करने वाले जिनकल्पी साधुओं के योग्य, देखो क्या क्या कहा है, ये जो उत्तम सहनन वाले हैं ना, वज्र शुभ नाराज सहनन वगैरह जो चतुर्थ काल में होते हैं जो, और उसमें भी जो सहननधारी होते हैं उत्कृष्ट वाले जो है, तो उनमें से कितने होते हैं जिनकल्पी होते हैं, एक होते हाँ दूसरे, एक तो संघ में रहने वाले और एक अकेले वो सारा पालने वाले, तो उत्तम सहनन वाले हो तो ये कर सकते हैं, तो उनके लिए उसको अलग से नियम बताए। तो उनके योग्य त्रिकाल योग आदि अनुष्ठान का, उनके करने योग्य जो कुछ कार्य विशेष है उसको अनुष्ठान कहेंगे, और स्थविर कल्पी साधुओं के, अन्य जो मुनि संघ में रहेंगे उनके लिए दीक्षा शिक्षा गण पोषण आत्म संस्कार संलेखना आदि का विशेष वर्णन है। यानी वो तो एकाकी विहार करने वाले उत्तम सहनन वाले सभी नहीं कर सकते, तो उनके लिए कुछ विशेष बातें बताई कौन से योग धारण करना क्या करना, और जो मुनि संगम है तो भिक्षे की विधि क्या है, शिक्षा वो मुनियों का जो संघ का क्या क्या होता है, आचार्य उनके क्या क्या उनकी जो कुछ गतियां विधियां क्या क्या है वो सब बताएंगे महाकल्प में।
तो सौनन में खाली दो भाग पड़ेंगे, उत्कृष्ट सौनन वाले और बाकी के सबके लिए आचरण सभी एक तरीका होगा कि उसमें,
नहीं नहीं वो तो बताएंगे नहीं, ऊपर बताया था सौनन की, अभी अभी ऊपर भी बात आई थी उसकी
महाकल्प
और काल और सौनन का आश्रय, उसके पहले भी सौनन की बात आई थी। देखो पुंडरीक भवनवासी व्यंतर ज्योतिष और कल्पवासी, इन चार प्रकार के देवों में उत्पत्ति के कारण रूप दान पूजा तपश्चरण अकाम निर्जरा समय दर्शन और संयम आदि अनुष्ठानों का वर्णन करता है। और महापुंडरीक समस्त इंद्र और प्रतिंद्रों में उत्पत्ति के कारण रूप तपो विशेष आदि आचरण का वर्णन करता है। प्रमाद जन्य दोषों के निराकरण करने को निषिद्धि कहते हैं, और इस निषिद्धि अर्थात बहुत प्रकार के प्रायश्चित के प्रतिपादन करने वाले शास्त्र को निषिद्धिका कहते हैं। ये तो आचार्य जो है ना वही इसको पढ़ते हैं, सबके लिए वो नहीं, वो पढ़ने के लिए मना होती है। अब अंग प्रविष्ट, पहले तो ये अंग बाह्य है, बहुत छोटे है अंग, तो 12 अंगों की तो बहुत बड़ी रचना है, उसको अंग प्रविष्ट कहेंगे, तो उसके नाम पर ये बताएंगे। अंग प्रविष्ट के अर्थाधिकार 12 प्रकार के हैं, यानी उनके 12 जो अलग अलग नाम है उसको बताएंगे। आचार सूत्रकृत, उसका ऐसे आचारांग सूत्रकृतांग ऐसे हर एक के आगे अंग शब्द लगाना, स्थानांग समवायांग व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग नाथ धर्मकथा, देखो इसका दूसरा नाम है ज्ञातृ धर्मकथा, उसी को यह नाथ धर्मकथा भी कहते हैं। उपासकाध्ययन अंतकृत दशांग जिसका नाम है, इसके अर्थ देखेंगे, उसका विषय भी देखेंगे बाद में। अनुत्तरोपपादिक दशा, दशा यानी वो दश होनी चाहिए, दशांग शब्द आता है। प्रश्न व्याकरण विपाक सूत्र और दृष्टिवाद, ये 12वें अंग का नाम है दृष्टिवाद। इनमें से आचारांग 18,000 पदों के द्वारा, क्या द्वारा बताता है वो बताएंगे। ये 18,000 जो पद बताए हैं, तो ये 18,000 पद में एक पद में अक्षर कितने होते हैं, 83,000 7888 07 हाँ एन ए 1634 83 07888 इतने अक्षरों का एक पद होता है और ऐसे 18,000 पदों में ये रचना हुई है। तो ये आचारंग की बात यहाँ चल रही है। देखो ये उसमें क्या बताया है, ये यहाँ 70 और 71 नंबर के श्लोक में ये गाथा में बताया है। ऊपर पढ़ेंगे पहले, कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम से कदम भुंजे ज भासे ज कदम पावम न बच्छई जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम से जदम भुंजे ज भासे ज एवं पावम न बच्छई। पहले पूछा कैसे करना चाहिए ऐसा ऐसा ऐसा, और वैसा करना चाहिए जैसे पाप का बंध न हो। देखो हम इसका अर्थ पढ़ते हैं, यानी वो आचारंग में क्या क्या बताया है, किस प्रकार चलना चाहिए। आचारंग अर्थ होता है मुनियों के आचारों का इसमें वर्णन है, और वो श्रावक के आचार वो उपासक का ध्यान में बताएंगे 7वें नंबर के। इसमें तो किस प्रकार चलना चाहिए, किस प्रकार खड़े रहना चाहिए, किस प्रकार बैठना चाहिए, किस प्रकार शयन करना चाहिए, किस प्रकार भोजन करना चाहिए, किस प्रकार संभाषण करना चाहिए, और किस प्रकार पाप कर्म नहीं बनता है, इस तरह गणधर के प्रश्नों के अनुसार। तो ये जो दिव्य ध्वनि में जो बातें आई है, क्या आई है, यत्न से चलना चाहिए, यत्न पूर्वक खड़े रहना चाहिए, यत्न से बैठना चाहिए, यत्न ने वो सावधानी से, यत्न पूर्वक शयन करना चाहिए, यत्न पूर्वक भोजन करना चाहिए, यत्न से संभाषण करना चाहिए। इस प्रकार आचरण करने से पाप कर्म का बंध नहीं होता, इत्यादि रूप से मुनियों के आचार का वर्णन करता है। दूसरे अंग का नाम है सूत्र कृतांग, उनमें 36,000 पदों के द्वारा, इसके डबल है, परंतु डबल डबल ऐसा आगे नहीं समझना, ज्ञान विनय प्रज्ञापना कल्प्याकल्प्य छेदोपस्थापना और व्यवहार धर्म क्रिया का प्ररूपण करता है, तथा यह स्व समय और पर समय का भी निरूपण करता है। यानी जैन मत और अन्य मतियों के भी क्या क्या मत होते हैं उसकी भी चर्चा यहाँ होगी। तीसरा है स्थानांग, 42,000 पदों के द्वारा एक से लेकर उत्तरोत्तर एक एक अधिक स्थानों का वर्णन करता है, उसका उदाहरण महात्मा अर्थात यह जीव द्रव्य निरंतर चैतन्य रूप धर्म से उपयुक्त होने के कारण उसकी अपेक्षा एक ही है। यानी हम चैतन्य उपयोग की अपेक्षा जीवों के कितने भेद हो गए, कोई भेद नहीं हो गए, एक ही है, एक ही प्रकार के सारे जो उपयोग ही है ना, चेतन को है उपयोग रूप, वो सिद्ध हो या निगोध हो या मनुष्य हो, एकेंद्रिय हो या चतुरेंद्रिय हो पंचेंद्रिय हो, सारे उपयोग स्वरूप है, तो उसकी अपेक्षा एक हुआ भेद। ज्ञान और दर्शन के भेद से दो प्रकार का है, कर्मफल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना के लक्ष्यमान होने के कारण तीन भेद रूप है, अथवा उत्पाद व्यय और द्रव्य के भेद से तीन भेद रूप है। चार गतियों में परिभ्रमण करने की अपेक्षा इसके चार भेद हैं। औदयिक आदि पांच प्रधान गुणों से युक्त होने के कारण इसके पांच भेद है, या उदय का भी पांच भाव है ना, पांच भाव, उसकी अपेक्षा पांच भेद। भवांतर में संक्रमण के समय पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर और नीचे, इस तरह छह संक्रमण लक्षण अपक्रमों से युक्त होने की अपेक्षा छह प्रकार है। ये मिला आपको रेफरेंस, ऊपर हमने कहा था पढ़ी नहीं, अभी पढ़ेंगे बीच में से 72-73 ऊपर। प्रश्न नहीं, वो ऊर्ध्वगमन की बात चलती रहती है ना, मानते नहीं है।
अभी तुम युद्ध में जाते हो तो छत्र वस्त्र लेके जाते हो ऐसे खाली इलाके में? युद्ध में जाना है तो सारी तैयारी करनी
पड़ेगी।
हम हमारी बात है
नहीं, कोई क्या है रेफरेंस मांगते, किधर है किधर है किधर है, इसलिए। नहीं, वो विग्रह गति भवांतर में संक्रमण करना है, नहीं विग्रह गति में, भवांतर में संक्रमण, भवांतर ने अन्य भोग को प्राप्त करना, उस समय 6 दिशाओं में जाना होता है। ये क्या कहा, देखो पहले अभी अभी ऊपर की हम गाथा पढ़ लेते हैं दोनों। एको चेयम अप्पो सो द्वि अप्पो तिलक्षणो भणियो चतुसंक्रमणाजुक्तो पंचग गुणपहाणो छक्कावक्कमजुक्तो कमसोऽसौ सत्तभंगि सद्भावो अट्ठासवोऽनवट्ठो जीवो दशठानियो भणियो। अभी हम जो पढ़ रहे थे ना, भवांतर में संक्रमण के समय यानी विग्रह गति में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर और नीचे, इस तरह 6 संक्रमण लक्षण अपक्रमों से युक्त होने की अपेक्षा 6 प्रकार का है। हाँ हाँ वही है, 6 अपक्रमों से युक्त है। अस्ति नास्ति इत्यादि 7 भंगों से युक्त होने की अपेक्षा 7 प्रकार का है। ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार के कर्मों के आश्रव से युक्त होने की अपेक्षा, आश्रव नहीं आश्रव स्रव स अपेक्षा 8 प्रकार का है। अथवा ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का तथा 8 गुणों का आश्रय होने की अपेक्षा 8 प्रकार का है। जीवादि 9 प्रकार के पदार्थों को विषय करने वाला अथवा जीवादि 9 प्रकार के पदार्थों रूप परिणमन करने वाला होने की अपेक्षा 9 प्रकार का है। जब हम 9 पदार्थ कहते हैं वो पर्याय रूप होते हैं सारे, जब 7 तत्वों में बात करते हैं वहाँ तो जीव अजीव तो 2 द्रव्य तत्व है और बाकी 5 पर्याय है। जब हम 9 भेद करते हैं जीव को भी वो पर्याय रूप ले लेते हैं, ये जीव की पर्याय है सारी, उसको 9 पदार्थ कहा है, इसलिए उसकी अपेक्षा जीव ही 9 प्रकार का हो जाता है। पृथ्वी कायिक जल कायिक अग्निकायिक वायु कायिक प्रत्येक वनस्पति कायिक साधारण वनस्पति कायिक, एक इंद्रिय के 6 भेद किए, 5 कायिक है परंतु वनस्पति कायिक में प्रत्येक और साधारण भेद करके 6 भेद बनाए। द्विंद्रिय जाति 3 इंद्रिय जाति चतुरिंद्रिय जाति पंचेंद्रिय जाति के भेद से 10 स्थानगत होने की अपेक्षा 10 प्रकार का कहा गया है। ऐसे हमने वो जीव समाज में भी अनेक भेद देखे थे ना, इतने कोई अपेक्षा लगाओ तो उसके इतने इतने भेद हो जाते हैं। हाँ, यानी जीवों के इतने प्रकार के भेद बताए अपेक्षा लगाकर, इसको स्थान कहेंगे स्थानांग। अब 102 पृष्ठ पर आते हैं, समवाय, और इसका नाम है अंग का समवायांग, यानी वो समानता किस किस में उसकी बात बताएंगे। इसमें 164 हजार पदों के द्वारा 64, वो मराठी में 64 लिखा है। संपूर्ण पदार्थों के समवाय का वर्णन करता है। समवाय कहने सादृश्य सामान्य से, सादृश्य सामान्य यानी उसमें क्या समानता है, द्रव्यों में समानता बताएंगे, क्षेत्रों में समानता बताएंगे, काल में समानता, भाव में समानता, ये जो समानता है उसको सादृश्य कहा। सादृश्य सामान्य से द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा जीवादि पदार्थों का ज्ञान कराता है। वह समवाय चार प्रकार का है, द्रव्य समवाय, क्षेत्र समवाय, काल समवाय और भाव समवाय। उनमें से द्रव्य समवाय की अपेक्षा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीव के प्रदेश समान है। तो आप बताएंगे कितने हैं प्रदेश, आप बताना। हाँ, कितने असंख्यात, एक लोक में जितने हैं उतने असंख्यात है ना। तो धर्म द्रव्य भी पूरा लोक प्रमाण है, अधर्म भी उतना ही है, लोकाकाश तो उतना है ही है। तो उसमें जितने प्रदेश है उतने ही प्रदेश एक एक जीव में है, प्रत्येक जीव में अपने अपने अलग। इसलिए कहते हैं ये द्रव्य समवाय हुआ, क्योंकि इन सभी चारों के प्रदेशों की संख्या समान हो गई। क्षेत्र समवाय यानी ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है कि जिनकी वो एरिया समान है, मालूम है? जम्बूद्वीप 45 लाख योजन का है, फिर सरवार सिद्धि 1 लाख योजन का है, जम्बूद्वीप भी 1 लाख योजन है,
मनुष्य लोग।
आप जम्बूद्वीप कह रहे हैं, सॉरी वो जम्बूद्वीप की उनकी बात बराबर है। हाँ, आप उसकी बात कर रहे हैं, यानी जम्बूद्वीप 1 लाख योजन है, सरवार सिद्धि भी 1 लाख योजन है, और सातवें नरक का बीच वाला जो इंद्रक बिल कहते हैं अवधि नामक, वो भी 1 लाख योजन वाला है, विस्तार वाला, उनकी एरिया समान है। और 45 लाख योजन क्या क्या है, मनुष्य लोक है। हाँ, बिल सीमंत तक बिल। पहले स्वर्ग के पहले पटल का बीच वाला जो इंद्रक विमान कहलाते हैं, उसकी भी एरिया उतनी ही है, 45 लाख योजन की। वो क्या क्षेत्र की अपेक्षा समानता होगी,
मनुष्य
सिद्धशिला भी उतनी है, 45 लाख योजन वाली है। देखो क्या कहते हैं, क्षेत्र समवाय की अपेक्षा नीचे तो 10,000 है। हाँ, देखो क्षेत्र समूह की अपेक्षा प्रथम नरक के प्रथम पटल का सीमंतक नाम का इंद्रक बिल, दाई द्वीप प्रमाण मनुष्य क्षेत्र, प्रथम स्वर्ग के प्रथम पटल का रुजु नाम का इंद्रक विमान और सिद्ध क्षेत्र समान है। सभी 45 लाख योजन प्रमाण विस्तार वाले हैं। क्या हुआ, काल की अपेक्षा एक समय के बराबर है, एक मुहूर्त के बराबर है। भाव की अपेक्षा केवल ज्ञान, केवल दर्शन के समान है, क्योंकि ज्ञेय प्रमाण ज्ञान मात्र चेतना शक्ति की उपलब्धि होती है। वो भी बराबर लिखना। यानी जितने केवल ज्ञान है उतने केवल दर्शन के भी गए, उन दोनों के बराबर ही है। नहीं, उसमें समानता नहीं ले सकते हम। देखो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, यहाँ तो पूरा ही ले लेने ना, भाव है केवल ज्ञान का जो है वो केवल दर्शन का है। आपने तो अलग अलग है ना, मति शुद्ध ज्ञान है और फिर वो तो चक्षु अचक्षु दर्शन है, उसमें अलग अलग डिफरेंस पड़ेगा ना। और उसमें भी क्षोभम के अनुसार हीनादिक होते रहती है, ये बात अलग है। अभी चौथा समवाय अंग हो गया, पांचवा है व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम का अंग, 228,000 पदों द्वारा क्या जीव है क्या जीव नहीं है इत्यादि रूप से 60,000 प्रश्नों का व्याख्यान करता है। ये व्याख्या प्रज्ञप्ति में मात्र प्रश्न ही है। छठा नाथ धर्म कथा अथवा ज्ञातृ धर्म कथा नाम का अंग, 556,000 पदों द्वारा सूत्र पौरुषी अर्थात सिद्धांतोक्त विधि से, सिद्धांत में बताए हुए विधि से स्वाध्याय की प्रस्थापना हो इसलिए तीर्थंकरों की धर्म देशना का, संदेह को प्राप्त गंधर्व देव के संदेह को दूर करने की विधि का तथा अनेक प्रकार की कथा और उपकथाओं का वर्णन करता है। सातवां है उपासकाध्ययन नाम का अंग, 1,170,000 पदों के द्वारा। अब ये तो श्रावक संबंधी जो आचार है ना उसकी बात बताएंगे। दर्शनिक व्रतिक सामायिकी, देखो ये प्रतिमाओं के नाम है, उसके धारक जीवों को दर्शनिक कह दिया, श्रावकों के भेद कहेंगे, उनके प्रतिमाओं के नाम आई ना, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा। तो जो दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक है उसको दर्शनिक श्रावक कहा, व्रत प्रतिमा जिसने धारण की है वो व्रतिक श्रावक हुआ। इस तरह से सामायिकी प्रोषधोपवासी सचित्त विरत रात्रि मुक्ति विरत ब्रह्मचारी आरंभ विरत परिग्रह विरत अनुमति विरत और उद्दिष्ट विरत, इन 11 प्रकार के श्रावकों के लक्षण, उन्हीं के व्रत धारण करने की विधि और उनके आचरण का वर्णन करता है। ये ऊपर 74 वाला है, यहाँ 74 अंक लिखना रह गया था और हमारा भी पढ़ना रह गया ऊपर का। अभी पढ़ेंगे। दंसन वद सामाय कोश सचित्तराय भत्तेय ब्रह्मारंभ परिग्रह अनुमण उद्दिष्ट देश विरधीय। आठवा अंतकृत दशा नाम का अंग, 2,28,000 पदों के द्वारा एक एक तीर्थंकर के तीर्थ में नाना प्रकार के दारुण उपसर्गों को सहन कर और प्रातिहार्य अर्थात अतिशय विशेषों को प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त हुए 10-10 अंतकृत केवलियों का वर्णन करता है। देखो क्या कहना चाहते हैं, हर एक तीर्थंकर के काल में 10-10 ऐसे केवल ज्ञानी होते हैं कि उन मुनियों पर घोर उपसर्ग हुआ था और उस अवस्था में, उपसर्ग की अवस्था में वो श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान होते ही उपसर्ग निवारण होता है, वो सब बातें होती है। तो कहते हैं और वो विशेषताओं को प्राप्त हो जाते हैं तो उनको निर्वाण हो जाता है, उनको कहते हैं अंतकृत केवली। और इसे 10-10 होते हैं उसका नाम है अंतकृत दशा। एक एक तीर्थंकर के काल में ऐसे 10-10 होते हैं। अब 24 के काल में हर एक में 10-10 हुए थे। हाँ होगी, कितने मुनियों को हुआ होगा ना, उसके मसरण में बैठे बैठे भी होते हैं, वहां तो कोई उपसर्ग नहीं होगा पर बाह्य में किसी को हो जाएगा। उनका जो काल है तीर्थ काल उसमें कितने हुए होंगे ना, जैसे इतने सालों में बाद की क्यों सोचते हैं,
उसके
उनके काल में हाँ ये उनका जो तीर्थ काल है नहीं, उनके जो केवल ज्ञान हुआ और जब तक मोक्ष गए उस काल में अनेक जीव मोक्ष गए होंगे ना। जो मुख्य होते हैं उनकी तो बात आती है। हाँ इसी से तत्वार्थ भाष्य में भी कहा है, देखो क्या कहा है यहाँ देखते हैं। ये वर्धमान तीर्थों के काल में ही हो गए, कौन कौन वो बता रहे, देखो
नाम दिए,
जिन्होंने संसार का अंत किया है उन्हें अंतकृत केवली कहते हैं। वर्धमान तीर्थंकर के तीर्थ में, तीर्थ है ना वो, तीर्थ है ना वो, जब से उनको यानी समोचरण चला है जितने काल तक, वो उनका तीर्थ काल है, तो उनके तीर्थ में शासन काल तो अब भी चल रहा है, तीर्थ काल यानी वो उनका समोचरण, जब तक उनका कल्याण निर्वाण नहीं हुआ तब तक की बात, उनके केवल ज्ञान हुआ समोचरण, जो दिव्य ध्वनि का काल है, समोचरण का काल है, उसको उनका तीर्थ काल कहेंगे। तो वर्धमान तीर्थंकर के तीर्थ में नमी, मतंग, सोमिल, रामपुत्र, सुदर्शन, यमलीक, वलीक, किष्कंबिल, पालंब, अष्टपुत्र, ये 10 अंतकृत केवली हुए हैं। इसी प्रकार ऋषभदेव आदि 23 तीर्थंकरों के तीर्थ में और दूसरे 10-10 अनगार यानी मुनि दारुण उपसर्गों को जीतकर संपूर्ण कर्मों के क्षय से अंतकृत केवली हुए। ये इसका भाषांतर बराबर नहीं है, देखो ऊपर देखो क्या लिखा है, प्राकृत में चौथी लाइन लास्ट में, पहले तो वर्धमान तीर्थंकराचे तीर्थ में कौन से 10 हुए वो बताए, एवं मिला क्या, ऋषभादीनाम त्रयोविंशते तीर्थेषु अन्य एवं 10-10 अनगारा, तो उसका भाषांतर कर इसी प्रकार ऋषभदेव आदि 23 तीर्थंकरों के तीर्थ में और दूसरे, अच्छा और दूसरे ने अन्य और दूसरे का अर्थ होता है अन्य और दूसरे का अर्थ लेना अन्य 10-10 अनगार यानी 10-10 मुनि यानी हरेक के अन्य हरेक के काल में 10-10 अनगार दारुण उपसर्गों को जीत कर संपूर्ण कर्मों के क्षय से अंतकृत केवली हुए। बराबर इन सब की दशा का जिसमें वर्णन किया जाता है उन्हें अंतकृत दशा नाम का अंग कहते हैं। उसका नाम अंतकृत दशांग, अंग शब्द आगे लगा लेना। अब 9वें नंबर का जो अनुत्तरोपपादिक दशा, अब ये जो क्या हुआ, इतने इनको दारुण उपसर्ग हुआ और वो तो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, श्रेणी क्षपक श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान हुआ। अब ये जो अनुत्तरोपपाद वाले ऐसे हैं, उनके भी ऐसा ही उपसर्ग हुआ, उपसर्ग श्रेणी चढ़ के ये अनुत्तरवासी हो गए, तरवार सिद्धि में उत्पन्न हुए या अनुत्तर विमानों में उत्पन्न हुए, ऐसे 10-10 हुए, उसकी बात यहाँ करेंगे। अनुत्तर में उपपाद हुआ ना, उपपाद नहीं जन्म हुआ, अनुत्तर विमानों में जन्म लिया। देखो अनुत्तर उपपादिक दशा नाम का अंग 92,44,000 पदों द्वारा एक एक तीर्थ में नाना प्रकार के दारुण उपसर्गों को सहकर और प्रातिहार्य अर्थात अतिशय विशेषों को प्राप्त करके 5 अनुत्तर विमानों में गए हुए 10-10 अनुत्तरोपपादिकों का वर्णन करता है। तत्वार्थ भाष्य में भी कहा है उपपाद जन्म ही जिनका प्रयोजन है उन्हें औपपादिक कहते हैं। ये देवों में उपपाद जन्म है। विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, ये पांच अनुत्तर विमान है जो अनुत्तरों में उपपाद जन्म से पैदा होते हैं, उन्हें अनुत्तर उपपादिक कहते हैं। ऋषिदास, धन्य, सुनक्षत्र, कार्तिकेय, आनंद, नंदन, शालीभद्र, अभय, वारिषेण और चिलात पुत्र, ये दस अनुत्तर उपपादिक वर्धमान तीर्थंकर के तीर्थ में हुए हैं। इसी तरह ऋषभनाथ आदि 23 तीर्थंकरों के तीर्थ में अन्य 10-10 महासाधु दारुण उपसर्गों को जीत कर विजयाधिक 5 अनुत्तरों में उत्पन्न हुए। इस तरह अनुत्तरों में उत्पन्न होने वाले 10 साधुओं का जिसमें वर्णन किया जावे उसे अनुत्तर उपपादिक दशा नाम का अंग कहते हैं। ये प्रश्न व्याकरण नाम का अंग 93,16,000 पदों के द्वारा आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी और निर्वेदनी इन 4 कथाओं का वर्णन करता है। और क्या है ब्रैकेट में, तथा भूत भविष्यत और वर्तमान काल संबंधी धन धान्य लाभ अलाभ जीवित मरण जय और पराजय संबंधी प्रश्नों के पूछने पर उनके उपाय का वर्णन करता है। अब ये आक्षेपणी वगैरह क्या है, देखो यहाँ यहाँ लिखा है, आगे एक पैराग्राफ पढ़ लेंगे। जो नाना प्रकार के एकांत दृष्टियों का और दूसरे समयों का, दूसरे समय ने परमत मिथ्या मान्यता निराकरण पूर्वक शुद्धि करके 6 द्रव्य और 9 प्रकार के पदार्थों का प्ररूपण करती है, उसे आक्षेपणी कथा कहते हैं। जिसमें पहले पर समय के द्वारा स्व समय में दोष बतलाए जाते हैं और अनंतर पर समय के आधारभूत अनेक एकांत दृष्टियों का शोधन करके स्व समय की स्थापना की जाती है और 6 द्रव्य 9 पदार्थों का प्ररूपण किया जाता है, उसे विक्षेपणी कथा कहते हैं। क्या कहना, पहले आक्षेपणी क्या है, अपने मतों का प्रतिपादन करना, वो आक्षेपणी रेगुलर 6 द्रव्य 9 तत्व क्या क्या है सिद्धांत बता देना। विक्षेपणी में क्या है, पहले परमतों का जो है ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं चाहिए, वो परमत पहले प्रस्थापित करते हैं और फिर परमत का वो कैसा दोष सहित है कहकर उसका खंडन किया जाता है और बाद में अपनी बात प्रस्तुत की जाती है। जैसे भगवान का स्वरूप क्या है, तो सभी शत्रुओं का नाश करते हैं, हाथ में भक्तों का रक्षण करते हैं वगैरह वगैरह वर्णन करेंगे तो कहते फिर ये खोटा कैसे है वो बताने वाले, वो विक्षेपणी करता है। पुण्य के फल का वर्णन करने वाली कथा को संवेदनी कहता है, वो कल बताएंगे हम, और संसार शरीर भोगों में उत्पन्न वैराग्य उत्पन्न करने वाली निर्वेदनी होगी। तो ये शुरू से हम लेंगे 106 पृष्ठ पर। 4 प्रकार के कथन पद्धति है, ये कथा है ना, कथन पद्धति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो सदा देख